इस्लाम में बालाधिकार।
प्रिय श्रोताओ, साप्ताहिक कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार के कन्याकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
माँ के पेट में जो भ्रूण होता है उसका एक अधिकार स्वस्थ होना और उसकी निगरानी है। जब भ्रूण माँ के पेट में होता है तब उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसका उसके स्वास्थ्य और विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब भ्रूण माँ के पेट में होता है तो बहुत चीज़ें हैं जो उसके विकास में बहुत सहायक होती हैं। माँ के खाने पीने और उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का भ्रूण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भ्रूण पर उन बीमारियों का भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जिसमें माँ ग्रस्त होती है। जब भ्रूण माँ के पेट में होता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस्लाम में उसकी अनुशंसा भी की गई है क्योंकि भ्रूण पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।
माँ के खान पान और उसके शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है, इसलिए माँ के खान पान और उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिला के गर्भ धारण करने में मर्द और औरत दोनों की भूमिका होती है, परंतु गर्भ धारण करने के बाद मुख्य और असली भूमिका माँ की होती है और माँ के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। भ्रूण को माँ के पेट से भोजन मिलता है, वो माँ के शरीर के एक अंग की भांति होता है, तो जिस चीज़ का प्रभाव माँ पर पड़ेगा उस चीज़ का प्रभाव भ्रूण पर भी पड़ेगा। इसी बात के दृष्टिगत इस्लाम में खाने पीने की बहुत सी बातों की अनुशंसा की गई है ताकि स्वस्थ तथा सुंदर बच्चा दुनिया में कदम रखे।
वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात सिद्ध हो गई है कि जो बच्चे अपंग पैदा होते हैं या वे किसी जन्मजात बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो इसका कारण गर्भावस्था में माँ का भोजन होता है। यद्यपि बच्चे को दुनिया में लाने में माता पिता दोनों की भूमिका होती है, परंतु माँ की भूमिका अधिक होती है। भ्रूण माँ के पेट से भोजन करता है, उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो माँ के पेट से लेता है। इसी कारण भ्रूण के स्वास्थ्य पर माँ के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये भी सिद्ध हो चुका है कि जब भ्रूण माँ के पेट में होता है और जगह सीमित होती है, परंतु उस दौरान भ्रूण पर जो प्रभाव पड़ता है वो लगभग हमेशा के लिए और असीमित होता है। इसी प्रकार मानसिक दृष्टि से भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भ्रूण जब माँ के पेट में होता है और उसका पहला महीना होता है तो माँ के खान पान और इसी प्रकार उसकी बीमारी का भ्रूण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान माँ जो दवा खाती है, धूम्रपान करती है, मादक पदार्थों का सेवन करती है या शराब पीती है तो उसका सीधा प्रभाव भ्रूण के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए माँ को चाहिए कि खान पान के साथ इस प्रकार की चीज़ों पर भी ध्यान दे और इस्लामी शिक्षाओं में भी इन बातों की ओर संकेत किया गया है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्भावस्था को अच्छे समय की संज्ञा दी है और फरमाया है कि जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उस वक्त वो उस व्यक्ति की भांति होती है जो दिनों को रोज़ा रखता है और रातों को जाकर ईश्वर की उपासना करता है। इस दौरान महिला को बेहतरीन नामों से याद किया गया है और उसे बेहतरीन प्रतिदान दिया जाएगा। इस्लामी रवायतों में गर्भावस्था में महिला को शहीद का स्थान दिया गया है और कहा गया है कि अगर गर्भावस्था के दौरान या बच्चा पैदा होने के समय या दूध पिलाने के कारण महिला की मृत्यु हो जाए तो महान ईश्वर उसे खून में लथपथ शहीद का दर्जा देगा और गर्भावस्था के दौरान वो उस मुजाहिद की भांति है जो अपनी जान व माल से रणक्षेत्र में सत्य का समर्थन करता है।
जब महिला गर्भावस्था में होती है तो एक चीज़ उसके और भ्रूण के स्वास्थ्य में बहुत प्रभावी होती है और वो परिवार का समर्थन है। अगर महिला को इस बात का आभास हो जाए कि उसके घर वाले उसका विशिष्ट ध्यान रख रहे हैं तो वो बड़े आराम से उस समय की बहुत सी समस्याओं व कठिनाइयों को झेल जाती है और शारीरिक व मानसिक दृष्टि से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसे मतली, उल्टी, तेज़ प्यास, कमर दर्द, सिर दर्द और भार के बढ़ने जैसी बहुत सी शारीरिक समस्याओं का सामना होता है। पवित्र कुरान इस बारे में कहता है, हमने इंसान से माँ बाप के बारे में अनुशंसा की है।
माँ उस हालत में बच्चे को अपने पेट में वहन करती है जब उसे कमजोरी जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना होता है। गर्भावस्था के दौरान माँ बहुत सारी कठिनाइयाँ व समस्याओं को सहन करती है। महान ईश्वर उस दौरान सहन की जाने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को याद दिलाते हुए पवित्र कुरान के सूरह लुकमान में इंसान की अनुशंसा करता है कि वो माँ बाप विशेषकर माँ को न भूले। पवित्र कुरान की इस आयत में माता के प्रति एक प्रकार के मानसिक समर्थन को देखा जा सकता है।
इस्लामी शिक्षाओं में इस बात की अनुशंसा की गई है कि गर्भावस्था के पूरे 9 महीने के दौरान माँ को क्या खाना चाहिए। पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों ने इस संबंध में जो अनुशंसाएं की हैं वे आदेश के रूप में नहीं हैं बल्कि वे स्वास्थ्य अनुशंसाएं हैं और उन्हें अंजाम देने या न देने में इंसान पूरी तरह स्वतंत्र है और अगर किसी ने उन पर अमल नहीं किया तो उसने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने इस प्रकार की जो अनुशंसाएं की हैं उसका लक्ष्य समाज में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों में वृद्धि करना है।
हदीसों और इस्लामी शिक्षाओं का अध्ययन करने के बाद ईरानी डॉक्टर हसन अकबरी इस संबंध में कहते हैं कि गर्भावस्था के पहले महीने में महिला को हर सुबह एक मीठा सेब खाना चाहिए। शुक्रवार को नाश्ते से पहले अनार और प्रतिदिन नहार मुंह दो खजूर खाना चाहिए। दूसरे महीने में हर सप्ताह भेड़ का थोड़ा मांस खाना चाहिए और थोड़ा गाय का प्राकृतिक व शुद्ध दूध लेना चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन नहार मुंह दो अदद ओनाब लेना चाहिए। ओनाब लेने से पहले उस पर पवित्र कुरान के सूरह तौहीद की तिलावत करना चाहिए।
तीसरे महीने में सुबह में जेली के एक चम्मच से शहद खाना चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन नहार मुंह आयतल कुर्सी पढ़कर एक सेब और कुंदूर खाना चाहिए। चौथे महीने में प्रतिदिन एक मीठा सेब, शहद और अनार खाना चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन दो अंजीर पर पवित्र कुरान के सूरह व तीन की तिलावत करके नहार मुंह खाना चाहिए।
पांचवें महीने में सुबह में थोड़ी खजूर खाना चाहिए और छठे महीने में सुबह में नाश्ते के बाद अंजीर और जैतून खाना चाहिए और प्रतिदिन सूरह फतह पढ़कर नहार मुंह एक अनार खाना चाहिए। सातवें महीने में बादाम पर सूरह अनआम पढ़कर खाना चाहिए। अलबत्ता 40 दिन तक ऐसा करें तो बेहतर है। अगर गर्मी का मौसम हो तो हर खाने के बाद फ्रूट खाएं और उसके खाने से पहले और बाद में पानी न पिएं। इसी प्रकार प्रतिदिन एक फल पर सूर्य यासिन पढ़कर नहार मुंह खाना चाहिए।
आठवें महीने के बारे में भी इस्लामी रवायतों और उसकी शिक्षाओं में आया है कि मीठा दही, शहद और मीठा नार खाना चाहिए। नवें और अंतिम महीने के बारे में भी अनुशंसा की गई है कि भेड़ के मांस का कबाब खाना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती महिला को मसाले के सेवन से मना किया गया है। खजूर खाना चाहिए या प्रतिदिन थोड़ा दूध और खजूर पर सूर्य धर की तिलावत करके नहर मुंह खाना चाहिए, इस आशा के साथ कि बच्चा स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा।
इस्लाम धर्म में गर्भावस्था के दौरान इसके अलावा दूसरी चीज़ों के भी खाने पीने की अनुशंसा की गई है, जैसे गर्भवती महिलाओं को नाशपाती खाना चाहिए, इससे बच्चे अच्छे और सुंदर होते हैं। नाशपाती खाने से दिल मजबूत होता है, आमाशय अच्छा होता है और बच्चा बहादुर व सुंदर होता है। इसी तरह लोबा या कुंदूर गोंद खाने से बच्चा अधिक बुद्धिमान, समझदार, बहादुर और सुंदर होता है।
इस्लामी शिक्षाओं में आया है कि तलाक, अलग होने या आर्थिक समस्याओं के कारण भी भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार तलाक या किसी दूसरे अन्य कारण से पत्नी के अलग होने की स्थिति में उसका खर्च पति को देना जरूरी है। इस आधार पर अगर गर्भवती महिला अपने पति से अलग हो जाए तो पति पर उसका खर्च देना अनिवार्य है। इस बात को पवित्र कुरान के सूरह तलाक की 6 आयत से समझा जा सकता है। इस आयत में महान ईश्वर कहता है, जहां तुम रहते हो वहीं अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भी जगह दो और उन्हें कोई क्षति न पहुंचाओ। अगर वे गर्भवती हों उनका खर्च दो यहाँ तक कि वे बच्चे को जन्म दे दें, और अगर वे तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाएं तो उसके पैसे दे दो।
बहरहाल बच्चे की भलाई के लिए और गर्भावस्था के समय को अच्छी तरह गुजारने के लिए पति को चाहिए कि पत्नी का खर्च दे दे। गर्भावस्था के दौरान महिला के खर्च से संबंधित इस्लाम के जो आदेश हैं उनसे ये बिंदु स्पष्ट है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं में गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनमें से कुछ बातों बल्कि ज़्यादातर बिंदु बच्चे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बच्चे के पालन पोषण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान माँ का पेट है और वो बच्चे के व्यक्तित्व के गठन में मौलिक भूमिका निभाता है।